एक मरतबा दो गव्वाज बैठे हुए अपने ख़ानदान में के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि जिसमें बैक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते थे। दूसरे ने कहा, मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो उसे लेकर घर की छत पर खड़े होते तो बांस बादलों तक पहुँच जाता, जब चाहते बादलों को हिलाकर बारिश बरसा लेते। पहले गप्पी ने पूछा, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस आखिर रखते कहाँ थे? दूसरे गब्बाज ने कहा, और कहाँ रखते, तुम्हारे दादा ही के अस्तबल में रख दिया करते थे। बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इसी तरह शेखी बगाड़ते हैं। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालिगा आरई से काम लेते और धोखा देते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने इस मज़मून में इसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। आज हम जो मज़मून सुनने वाले हैं उसका उन्वान है अपने हमसाए से, जिसे लिखा है कन्हैया लाल कपूर ने। कन्हैया लाल कपूर 27 जून 1910 को ज़िला लायलपुर में पैदा हुई। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेज़ी के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हुए और यहीं 1980 में उनकी वफ़ात हुई। तंज़ व मिज़ाह में जुर्रत और बेबाकी कन्हैया लाल कपूर की ख़ास पहचान है। वो समाजी नाहमवारियों की जानदार तस्वीर पेश करते हैं। उनकी तहरीरों में तंज और एहतजाज का नुमाया पहलू है। उन्हें पैरोडी लिखने में भी ख़ास महारत हासिल थी। उनके तंजिया व मजाहिया खाके भी मकबूल हुए। नो के नश्तर, बालों पर संग व खिश्त, चंग व रबाब और कामरेड शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबें हैं। तो आइए सुनते हैं कन्हैया लाल कपूर का लिखा हुआ मजाहिया मज़मून अपने हमसाए से। आओ मियाँ समझौता कर लें, आज तक हम एक दूसरे पर रुअब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें करते रहे हैं जिन्हें फजूल ही नहीं मज़े का कैस कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरूब करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे या झूठ बोलकर अपनी आखिबत ख़राब करेंगे? क्यों ना हम इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्न रईस नहीं, बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मालिम हूँ और दोनों पिछले 5 बरस से एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है, तो मैं तुम्हें मुतला करता हूँ, मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज है। हालांकि ये हकीकत ये है कि तुम्हारा भाई किसी मैजिस्ट्रेट का चपरासी है और मेरा कोई भाई ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। 2 साल हुए तुमने कहा था, मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफजा मुकाम गालिबा नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था मैं भी माँ अहलो अयाल ओटा कमन जा रहा हूँ, लेकिन तुम नैनीताल गए और ना मैं ओटा कमन। तुमने वहाँ ना जाने का ये बहाना ढूँढा कि यकलख्त तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। मैंने ओटा कमन ना जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी है और मुझे उसका इंतज़ाम करना है। लुत्फ ये है कि मुझे मालूम था तुम्हारी भी बीवी भली चंगी है और तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या अभी सगाई तक नहीं हुई। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रुअब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज ख़रीदा, तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। चुनांचे ना चाहते हुए भी मुझे फ्रिज ख़रीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविज़न सेट ख़रीदना चाहते हो। खुदा के लिए ऐसा ना करना, वरना मैं तबाह हो जाऊँगा। फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, और अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा तो दिवालिया ही पिट जाएगा। मैं जानता हूँ कम व बेश तुम्हारा भी यही हाल है, यानी बकौल शायर, तुम मुस्करा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, तुम मुस्करा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। दूसरी बात यह है कि तुम खुले बंदों कभी इस बात का इतराफ़ नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने के खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बघारती है, ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 का रुपये का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगता है और वो उसी दिन फरमाइश करने लगती है कि इससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और ना ही नींद आएगी। गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मधु किया। अब मेरी बीवी का तकाजा है कि 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को दावत दूंगी, वरना हमसाए की नज़र से गिर जाऊंगी। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे हैं। चुनांचे मेरी बीवी कहती है, कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। तो तुम्हारी बीवी ने फौरन मुंह बनाकर जवाब देती है, 104 डिग्री बुखार भी कोई बुखार होता है? 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई, थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ 106 डिग्री बुखार है। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई, डॉक्टर तक को फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इसी मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हो या मैं। तुम्हारी बीवी कह रही थी, जब वो खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ 1 फरलांग से सुनी जा सकती है। मेरी बीवी उसे बता रही थी, हमारे साहब जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ सिविल हस्पताल में सुनाई देती है। कई बार डॉक्टर हमारे घर ये पूछने के लिए आते हैं, खैरियत तो है? हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लावजनी की आदत का शिकार हो गए हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है, मुझे हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च के मिलते हैं, तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, सिर्फ 2 रुपये, हमें तो हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है, मेरे बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7000 रुपये कमाए थे, तो मेरा लड़का इससे बाजी ले जाने की नीयत से उसे बताता है, मेरे डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फंड से 10000 रुपये उड़ा लिए थे। सूरत हाल इतनी नाजुक हो गई है कि डर लगता है कि किसी दिन हम दोनों अपने बच्चों या बीवियों के बयानात के बिना पर गिरफ्तार ना कर लिए जाएं। इसलिए आओ आज से समझौता कर लें कि आइंदा ना हम और ना हमारी बीवियां और ना बच्चे एक दूसरे पर रौब डालने की कोशिश करेंगे, बल्कि शराफत के साथ तस्लीम कर लेंगे कि हम दोनों मामूली हैसियत के आदमी हैं। और अगर हम ये समझते हैं कि हम रईस हैं, तो एक दूसरे को नहीं सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं।